पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोहे सौवसाहूणम्, नमियोणनन्तजिनम्, अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठम्, कम्मपदेशविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सुरतर ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में अभी जो हम प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार देख रहे हैं, उसमें अभी हम 52 पृष्ठ पर आ गए हैं। 52 पेज है, विशेषार्थ से पढ़ेंगे अभी। उत्तर प्रकृति की बात चल रही है अपने, और उसमें भी भागा भाग देख रहे हैं, प्रदेश भागा भाग की बात चलेगी यहाँ पर। पहले हमने मूल प्रकृति में भागा भाग देखा था, तो 8 कर्मों में जैसा उसका विभाजन होता है उसको देखा था। अब यहाँ मोहनी के खाते में जितना द्रव्य आता है उसका विभाजन कैसे होता है उसकी बात चलेगी। पहले हम देख लेते हैं,
टोटल विभाजन देख लेते हैं।
अंक संदृश्य है आगे। हमने इतना ही देखा था कि जितना मोहनी के खाते में आता है उसके अनंत भाग करेंगे तो एक भाग प्रमाण सर्वघाती प्रकृतियों को जाता है, और अनंत बहुभाग है वो देशघाती में जाता है। देशघाती के खाते में जितना आया है उसको अवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे, एक भाग अलग रखेंगे और उसके दो समान हिस्से करेंगे, एक कषाय को एक नो कषाय को चला जाएगा। कौन से कषाय उनको जाएंगे, कषाय कितने होते हैं? 16। हमने पहले सर्वघाती को अलग निकाला था,
ये संज्वलन को जाएगा।
अभी बचे संज्वलन, तो आधे आधे दो हिस्से के ये समान, तो एक संज्वलन का हिस्सा 4 संज्वलन और एक बाजू में 5, वो नौ कषाय वाले जो है 9 को 5 में विभाजित करेंगे। फिर जो एक भाग अलग रखा था फिर उसका आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर बहुभाग एक भाग करना। बहुभाग कहाँ देना? पहले तो कषाय में देना और एक भाग नौ कषाय में मिलाना। नौ कषाय का जितना है उसको आवली का असंख्यात भाग भाग दो, उसका एक भाग अलग निकालो और बहुभाग के 5 समान भाग करो। अब जो एक भाग रखा था फिर उसको फिर वही प्रोसेस, बहुभाग लेना। पहला बहुभाग वेद में, दूसरा वेद बहुभाग रति में, तीसरा बहुभाग हास्य शोक में, चौथा बहुभाग भय में, और पांचवा एक भाग बहुभाग में, वो जुगुप्सा में। ये प्रोसेस है, इसको हमने कल पढ़ा था, ये विशेषार्थ से पढ़ेंगे। देखो मोहनी की उत्तर प्रकृतियों में भागा भाग के दो भेद करके पहले प्रदेश भागा भाग का कथन किया है। दो भागे ने प्रदेश भागा भाग और जीव भागा भाग, यहाँ प्रदेश भागा भाग का प्रकरण है। प्रदेश भागा भाग के द्वारा यह बतलाया जाता है कि उत्तर प्रकृतियों में किस प्रकृति को कितना द्रव्य मिलता है, अर्थात प्रति समय बनने वाले समय प्रबंध में से मोनिय को जो भाग मिलता है वह उसकी उत्तर प्रकृतियों में तत्काल विभाजित हो जाता है, तत्काल उसी क्षण। इस प्रकार संचित होते होते मोहनीय की उत्तर प्रकृतियों में जिस क्रम से संचित द्रव्य रहता है उसका विभाग क्रम यहाँ बतलाया है। क्योंकि अपना तो प्रदेश विभक्ति में हम संचित द्रव्य की ही बात करेंगे, एकोइंग आ रही है आवाज की, थोड़ा कम करना, थोड़ा स्लाइट। आपका कोई प्रश्न था? हाँ, तत्काल अर्थात बनते समय ही, जिस समय बंधा है उसी समय वो अलग अलग प्रकार से विभाजित होकर ही बनता है। हाँ, क्योंकि कारमान वर्गणा ही अलग प्रकार की होती है, जैसे हमने देखा प्रकृति जैसे अलग अलग होती है, जैसे बनते समय ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अलग विभाजन होता है, वैसे उत्तर प्रकृतियों में भी तत्काल ही विभाजन होता है। ऐसा नहीं बन गए बाद में उसका बंटवारा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, नए जो है उस समय ये इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विभाजन होता है। बाद में तो संक्रमण के द्वारा जो कुछ होता है वो होता है, सत्ता में पड़े पड़े भी सजातीय प्रकृतियों में उसका संक्रमण होता रहता है। अभी अपना संचित द्रव्य की बात चल रही है। चूंकि इस ग्रंथ में प्रकृति आदि सभी विभक्तियों का कथन सत्ता में स्थित द्रव्य को लेकर ही किया है, जैसे हमने स्थिति विभक्ति देखी, अनुभाग विभक्ति देखी, तो उसमें भी सत्ता में कितने हैं उसकी बात चली है। अन्यथा बध्यमान समय प्रबंध का विभाग तो तत्काल हो जाता है, जैसा कि पहले हमने लिखा है। विभाग का जो क्रम बतलाया है उसका खुलासा इस प्रकार है, मोहनीय कर्म का जो संचित द्रव्य है उसमें अनंत का भाग दो। एक भाग प्रमाण सर्वघाती द्रव्य होता है और शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य देशघाती होता है, यानी देशघाती प्रकृतियों का होता है। यह स्पर्धक की बात नहीं, प्रकृतियों की बात है। एक भाग प्रमाण सर्वघाती द्रव्य को अलग रख दो, उसका बंटवारा बाद को करेंगे, हम बाद में करेंगे कहते ना, पहले बहुभाग प्रमाण देशघाती द्रव्य लो। यानी सर्वघाती का जो बंटवारा होगा, कितने प्रकृतियां सर्वघाती?
13
है, मिथ्यात्व और 12 कषाय है, तो उसका बंटवारा बाद में कहेंगे, देशघाती प्रकृतियों के पहले बता रहे हैं। तो ये बहुभाग प्रमाण जो देशघाती द्रव्य है, बहुभाग यानी कौन सा बहुभाग?
अनंत वाला,
अनंत बहुभाग। अनंत वा भाग सर्वघाती को दिया, अनंत बहुभाग देशघाती को दिया, उसमें आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो। लब्ध एक भाग को जुदा रखकर शेष बहुभाग के दो समान भाग करो। अभी हमने इसी को देखा था, अभी रिवीजन की थी हमने। उन दो भागों में से एक भाग में, दो समान भाग हुए ना, अब उसके एक भाग में, अलग रखे हुए एक भाग में आवली के असंख्यात वे भाग का भाग देकर बहुभाग को मिला दो। हमने एक भाग अलग रखा, बहुभाग के दो भाग किए समान, अलग रखे हुए भाग का फिर बहुभाग एक भाग किया, तो जो बहुभाग है वो कषाय को देना और शेष एक भाग सहित दूसरा भाग। दो समान भागों में रखा था हमने और जो बाकी रखा था एक बाजू में उसका बहुभाग कषाय में मिलाया और एक भाग नो कषाय में मिलाया। तो पहले समान भाग वाला भाग प्लस एक भाग वाला भाग ये नो कषाय को मिला। जैसे अभी यहाँ अंक संदृष्टि से बता रहे हैं, जैसे यदि मोहनीय कर्म के संचित द्रव्य का प्रमाण 65,536 कल्पित किया जावे, ये समझने के लिए वो पनट्टी का प्रमाण देके समझा रहे, और अनंत का प्रमाण 16 कल्पित किया जावे, अनंत भाग करने नहीं उसके पहले, और उसमें अनंतवा भाग अलग निकालना। तो 65536 में 16 का भाग देने से लब्ध एक भाग, यानी एक भाग की वैल्यू कितनी है 4096। यह सर्वघाती द्रव्य है। तो देशघाती कितना होगा, 65536 में से 4096 बाद करो तो 61440 जो रहा वो देशघाती द्रव्य है। यहाँ तक समझ में आई बात? ये तो आसान है। देशघाती द्रव्य का बंटवारा देशघाती प्रकृतियों में ही होता है। देशघाती दिख रहा है, देशघाती। अतः इस देशघाती द्रव्य 61440 में, ये पूरा देशघाती का द्रव्य है। आवली के असंख्यातवे भाग के कल्पित प्रमाण चार से भाग देने पर, हमने मान लिया आवली का असंख्यातवा भाग चार है, हम उससे भाग देंगे, लब्ध एक भाग 15360 आता है। 61440 उसको चार से भाग दिया तो 15360 आए। आगे की प्रोसेस क्या है?
दो भाग कर देने का,
उसको अलग रखेंगे है? इस एक भाग को जुदा रखने से शेष बहुभाग कितना हुआ? देखो 61440 हमना पहला था हमारा देशघाती द्रव्य, उसमें से एक भाग 15360 माइनस कर दिया तो 46080 रह जाता है। इस बहुभाग के दो समान भाग करने से प्रत्येक भाग का प्रमाण 23040 होता है। ये तो समान भाग हुआ, एक भाग हमने अलग रखा था, फिर उसके बहुभाग एक भाग करना और एक में बहुभाग मिलाना, एक में एक भाग मिलाना। इसमें जुदा रखे हुए एक भाग 15360 के बहुभाग कैसे निकाले, उसको चार से भाग देना और उसमें से माइनस करना तो बहुभाग 11520 मिला देने से, वहाँ 23040 तो समान भाग था, उसमें 11520 बहुभाग मिला दिया तो 34560 जो है वो संज्वलन कषाय का द्रव्य होता है। संज्वलन कषाय जो है क्रोध मान माया लोभ सभी आ गए। यानी चार ही इसमें कषाय है, अनंतानुबंधी आदि वो अनंत विभाग में सब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। और बचे हुए एक भाग कितना है वो 3840। भानुवे 3840 कैसे आया था? एक भाग जो था ना 15360 उसको चार से भाग दिया था। तो 3840 आया था, उस सहित दूसरा समान भाग जो एक समान भाग कषाय को और एक समान भाग नौ कषाय को दिया था, वो समान भाग की वैल्यू थी 23040। उसमें मिलाने पर 26880 नौ कषाय का द्रव्य होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? मोहनी का बंटवारा देशघाती में कैसे हो रहा है उसकी बात चली। नौ कषाय नौ है, 53 पृष्ठ पर चल रही बात 53, किंतु उनमें से एक समय में पांच का ही बंध होता है। क्यों? वो प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। मोहनी की प्रतिपक्षी प्रकृतियां कौन कौन सी है? हाँ, मोहनी में प्रतिपक्षी कितनी प्रकृतियां हैं? हाँ बोलो ना, कौन सी है?
नहीं, नहीं।
पांच कौन सी? हाँ ये बंद की बात है। आपने जो बताया वो उदय का बताया,
प्रतिपक्षी।
तो देखो ध्रुवबंदी है वो, हमें बंद में ऑप्शनल चाहिए। ध्रुवबंदी प्रकृतियां कौन सी? वो तो बाकी तो सब चली गई। अब यहाँ पर यानी मिथ्यात्व सोला कषाय और भय जुगुप्सा, ये ध्रुवबंदी है। ऑप्शनल को इतनी रहेगी, सात रहेगी। तीन वेद में से एक, तो तीनों वेद प्रतिपक्षी होते हैं क्योंकि उसमें से एक बंधेगी, हास्य रति बंधेगा या शोक रति बंधेगी, तो वो तीन और ये चार, सात में से बंधेगी कितनी, तीन ही बंधेगी। 19 तो ध्रुव बंदी है, बनती ही है, मिथ्यात्व में तो बनती ही है सभी, और 19 और ये तीन 22 प्रकृतियों का बंध होगा। यहाँ देशघाती में हम देख रहे हैं, नौ कषाय में देख रहे हैं, इसलिए देखो नौ कषाय कितनी बंधेगी ऐसा पूछेंगे तो भय जुगुप्सा तो बनती ही है और बाकी तीन ऑप्शनल है, वो तीन है बनने वाली, तीन है। किसमें से तीन बनती है, सात में से तीन बनती है, तीन वेदों में से एक वेद और दो युगल में से एक युगल। अब यहाँ पढ़ेंगे आगे, देखो उनमें से एक समय में पांच का ही बंध होता है, इसका अर्थ समझ में आता है मंजू बहन? मोहिनी के नौ कषाय का बंध कितने का होता है तो नौ, पांच का बंध होता है। भय और जुगुप्सा तो बनती है, ध्रुव बंदी है वो, तीन वेद में से एक वेद बंधेगा और दो युगल है ना, हास्य रति या शोक रति, उसका कॉम्बिनेशन पलट जाए, हास्य और रति हो जाए, ऐसा भी कभी नहीं होगा। हास्य के साथ रति का ही बंध होगा और शोक के साथ अरति का ही बंध होगा। तो इस तरह से पांच है, बंधने वाली पांच है, उसमें तीनों वेदों में से एक वेद, रति अरति में से एक, हास्य शोक में से एक और भय तथा जुगुप्सा, ये दोनों ही बनती है। आपको जो याद आया था ना वो उदय में, उदय में ऑप्शनल है, उदय या भय का होगा या जुगुप्सा का होगा या दोनों का होगा या दोनों का ही नहीं होगा, चारों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। भय जुगुप्सा में, बंधने में तो वो ध्रुव बंदी है, हर समय बनता ही है, ऐसा नहीं कि जो बहुत डरपोक है उसको भय का बंध होगा दूसरे को नहीं होगा, ये बात नहीं है। देखो अतः तीनों वेदों रति अरति और हास्य शोक में अभेद विवक्षा करके संचित द्रव्य का बंटवारा भी उसी रूप से बतलाया है, यानी रति अरति का इकट्ठा बताया, क्योंकि कभी ये बनती है कभी वो बनती है, तो उसके खाते में द्रव्य तो उतना होगा, इसलिए नौ कषाय को जो द्रव्य मिलता है वह पांच जगह विभाजित हो जाता है। पहले नौ कषाय को कितना मिलता है उन्होंने बता दिया, अपने संदृष्टि में 26,880 नौ कषाय का द्रव्य, अभी इसका पांच में बंटवारा होगा उसको बता रहे हैं। उसके विभाग का क्रम इस प्रकार है, नौ कषाय के द्रव्य में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर, यानी अभी 26,880 को हम चार से भाग देंगे, लब्ध एक भाग को जुदा रखो और शेष बहुभाग के पांच समान भाग करो, फिर जुदे रखे हुए एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो, लब्ध एक भाग को जुदा रखकर शेष बहुभाग को पांच समान भागों में से पहले भाग में जोड़ देने से जो द्रव्य होता है वह द्रव्य वेद का होता है, द्रव्य वेद का नहीं, वह द्रव्य वेद का होता है, यानी पांच में से पहला बहुभाग देना वेद को, फिर जुदे रखे हुए एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देकर लब्ध एक भाग को जुदा रख शेष बहुभाग को पांच समान भागों में से दूसरे भाग में जोड़ देने से रति अरति का द्रव्य होता है। कल हमने मूल में देखा ही था, पढ़ा था इसको, अभी विशेषार्थ में दोबारा पढ़ रहे। इसी प्रकार जुदे रखे एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देकर और एक भाग को फिर जुदा रख शेष बहुभाग को तीसरे भाग में जोड़ने से हास्य शोक का भाग होता है, फिर जुदे रखे एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देकर बहुभाग चौथे में मिलाने पर भय का भाग होता है, और फिर शेष बचे एक भाग को पांचवे समान भाग में जोड़ देने से जुगुप्सा का भाग होता है, क्योंकि अभी एक ही बचेगा ना, अभी उसका कोई फिर दोबारा भाग देने का प्रयोजन नहीं है। जैसे नो कषाय का द्रव्य 26,880 है, वो कैसे निकाला हमने ऊपर देखा था, ऊपर देखा है इसको, उसमें आवली के असंख्यातवे भाग के कल्पित प्रमाण 4 का भाग देने से लब्ध एक भाग 6,720 आता है। उसे अलग रखने से शेष यानी 26,880 में से 6,720 घटाएंगे तो 20,160 बचते हैं। उसके 5 समान भाग करने से प्रत्येक भाग का प्रमाण 4,032 होता है। जुदे रखे हुए एक भाग 6,720 में 4 का भाग देने से लब्ध एक भाग 1,680 आता है। अब क्या करेंगे, उसको अलग रखेंगे और बहुभाग वो पहले भाग में मिलाएंगे। इसे अलग रखकर शेष बहुभाग 6,720 में से 1,680 घटाएंगे 5,040 को पहले समान भाग 4,032 में जोड़ने से वेद का द्रव्य 9,072 होता है। फिर जुदे रखे एक भाग 1,680 में 4 का भाग देने से लब्ध एक भाग 460 आता है। चार सौ बीस चाहिए, यहाँ 460 हुआ है। नीचे लिखा है ना 420, नीचे के लाइन में है 420, और करके भी देखो तो 420 आता है। इसे जुदा रखकर शेष बहुभाग 1,680 में से 420 गए तो 1,260 को दूसरे समान भाग में जोड़ने से यानी 4,032 जो हमने पहले देखे थे उसमें 1,260 मिला देना तो 5,292 आते हैं। वो रति अरति का द्रव्य होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए, आगे भी यानी एक एक भाग का, फिर बहुभाग एक भाग करो, बहुभाग उसमें मिलाते जाओ। यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है, मूल में एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग न देकर यह लिखा है कि आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करो। क्या कहते हैं, जो अभी हमने मूल पढ़ा था प्राकृत से वो हिंदी का भाषांतर, उसमें क्या लिखा था, भाग दो, ऐसा नहीं लिखा था, आवली का असंख्यातवा भाग का विरलन कर दो
और इसका बंटवारा करो
और उसमें वो समान खंड करके विभाजित कर दो, फिर विरलित एक भाग का विरलित जो है उसका प्रमाण वो अलग करो और जो विरलित अन्य एक एक के ऊपर जितने खंड है उसको इकट्ठा करके उसके वैल्यू दो। अपनी भाषा में वही भाग दे दो, एक भाग अलग रखो और बहुभाग को ले लो और वहां विरलित करके उसका बहुभाग एक भाग करो, ऐसा कहा है। दोनों का प्रपोर्शन समान वही है, कहने की पद्धति अलग अलग है। यही कहते कि मूल में एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग न देकर यह लिखा है, कौन क्या लिखा है, पद्धति कौन सी लिखी है कि आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करो। अभी हमने आवली चार मानी है तो चार का विरलन करो तो एक 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 आएगा। प्रत्येक विरलित रूप पर जुदे रखे हुए एक भाग के समान भाग करके दे दो। अभी हमने लास्ट जो समान भाग किए थे तो 1,680 को चार का भाग दिया था, तो चार का विरलन करेंगे, एक एक चार बार लिखेंगे और 1,680 को समान खंड करके दे देंगे तो कितना आएगा, एक एक रूप के प्रति
420
आएगी ना, चार बार उसकी 420 ऐसे चार टुकड़े हो जाएंगे। फिर कहेंगे एक खंड को अलग रखो और अन्य खंडों को इकट्ठा करो, यही एक भाग और बहुभाग कहलाता है। कहते कि आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करो और प्रत्येक विरलित रूप पर, रूप यानी एक संख्या, विरलित रूप ये चार को विरलन किया, चार बार एक एक लिखा तो एक ये प्रत्येक विरलित रूप है, प्रत्येक विरलित रूप पर जुदे रखे हुए एक भाग के समान भाग करके दे दो। किंतु ऐसा करने का मतलब ही जुदे रखे हुए भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देना होता है। क्या कहा, ये समझ में आई? जुदा रखा ना हमने, ये दो 16,080 जो रखा था जुदा, 1680 को जुदा रखा था, उसको इसमें समान भाग करके दे दो, उसी का अर्थ उसको भाग दे दो। जैसे 16 में 4 का भाग देने से 4 आता है, यह एक भाग है, वैसे ही उन्होंने 16 में ये घटित करके बतलाया, 16 में 4 का भाग देगी तो 4 आए, तो उन्होंने क्या किया, 4 का भाग देना है तो 4 को विरलित कर दो, तो 4 का विरलन करके और प्रत्येक विरलित रूप पर यानी प्रत्येक एक पर 16 को 4 समान भागों में करके दे रखने पर एक भाग का प्रमाण 4 ही आता है। यथा ये नीचे विरलित रूप है, एक 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 4 बार और हर एक के ऊपर 4-4 लिखे हैं, तो वो 4 का प्रमाण निकालने के लिए भी तो भाग ही देना पड़ता है ना हमको, ख्याल में आता है ना, समान खंड करके देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो हमें एक खंड का पता चलेगा। अतः यहाँ तो आपने आगे पढ़ के पढ़ा है, हाँ देखो कहाँ तक देखा हमने,
अरति और रति, अरति का द्रव्य लिया, हाँ। और
देखो 4032 अपना ओरिजिनल है, हाँ, देखो 4032 है ना, तो पहले भाग में कितने जोड़ा हमने, वेद को जोड़ा तो 9072 आ गए, फिर जो रह गया है एक भाग तो 1680 है, उसमें 4 का भाग देने से 420 आया, उसका भोग भाग है 1260, वो 1260 समान भाग में जोड़ा 4032 में 5292 आए, वो रति अरति का है। अभी हमको हास्य शोक का निकालना है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी है,
नहीं 105
420 है ना,
105 आ जाएगा,
तो 420 जो है
उसमें
420 उसको कितना 4 से भाग देना,
105 आएगा,
हाँ
105
आया, 105 माइनस करना 420 में से 315 उसमें मिला, तो हास्य का आया। हाँ अब हमें भय और जुगुप्सा का निकालना है। अभी ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है ना, हाँ इसलिए उसके पूर्णांक में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें समझने के लिए उसको 4 का भाग दे दो, अपूर्णांकों में रखो और अपूर्णांकों उसमें से माइनस कर दो, समझना ही है ना हमें, हमें तो समझने से मतलब है, तो फिर अपूर्णांक करेंगे हम तो 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, 10 रहेगी ना, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 24, हाँ 25, 26.25 आ जाएंगे, वो उसमें से माइनस करो, बहुभाग है वो भय को दे दो, और एक भाग जो 26.25 है वो जुगुप्सा को दे दो। नहीं नहीं ये तो हमें काल्पनिक संख्या है, 105 आए ना, फिर उसको 4 से भाग देना है, आगे का उन्होंने करा नहीं है, उन्होंने बताया इसे आगे भी कर देना, क्योंकि संदृष्टि है वो तो थोड़ी एप्लीकेबल होती है। देखो यथा ये बताया उन्होंने, अतः दोनों में कोई अंतर नहीं, यानी विरलित करो कहो या भाग देकर एक भाग निकालो कहो, एक ही बात है, मेथड में अलग अलग बात है, यानी उसके प्रोसेस अलग है, पद्धति अलग है करने के। आगे भी जहां जहां आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके उसके ऊपर जुदे रखे द्रव्य के समान भाग करके एक एक रूप पर एक एक भाग रखने का कथन किया है, वहां उसका मतलब जुदे रखे हुए द्रव्य में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देना ही समझना चाहिए, ये हमें समझने में आसान होता है। मूल में अथवा करके, मूल में जो अथवा लिखा है ना, अथवा करके अर्थात अथवा ऐसा लिखा था उन्होंने मूल में, यानी ये जो आवली का असंख्यात भाग, असंख्यात भाग उसको भाग देना। मूल में क्या बताया था कि जितना नौ कषाय का उसके पहले समान पांच भाग कर दो, फिर प्रत्येक को अलग अलग संख्या से भाग दे दो, और जो भाग देके एक एक भाग निकला है वो एक एक में मिला दो। उसका भी विशेषार्थ बता रहे हैं, मूल में अथवा करके या अथवा इन्वर्टेड में डालना, ये समझने में आसान होगा। तो मूल में अथवा करके विभाग का दूसरा क्रम भी बतलाया है, विभाग करने का दूसरा क्रम अन्य पद्धति लिखी है। वैसे बंटवारा का तो उतना ही होगा जैसा एक पद्धति से बताया है, ऐसा नहीं कि अथवा किसी को ऐसा क्रम होता है उसके दूसरे को ऐसा, ऐसा नहीं है। उस क्रम के अनुसार नौ कषाय को जो द्रव्य मिला है उसके पांच समान भाग करो, डायरेक्टली पांच समान भाग करना है। फिर पहले भाग में आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दो और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को अलग रख दो। अभी पांचों को अलग अलग से भाग देंगे और एक एक भाग जुदा रखेंगे। फिर दूसरे भाग में कुछ अधिक आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दो, भागाकार बढ़ा दिया तो क्या होगा, संख्या कम आएगी। और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को अलग स्थापित कर दो, यानी पहले भाग में से ज्यादा निकाला, दूसरे भाग में से कुछ कम निकाला माल। फिर तीसरे भाग में उससे भी कुछ अधिक आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दो, आवली का असंख्यात भाग ही फिर भी कुछ अधिक है। और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को पृथक स्थापित कर दो, भागार बढ़ा रहे हैं तो लब्ध छोटा छोटा होगा। फिर चौथे भाग में उससे भी और अधिक आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दो और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को पृथक स्थापित कर दो। भाग दे दे करके पृथक स्थापित किए हुए इन चारों भागों को पांचवें समान भाग में जोड़ देने से वेद का द्रव्य होता है। उल्टे क्रम से निकाला हमने, पहला भाग किसको रखेंगे अभी, ऐसा नहीं, हमने पांच समान भाग किए थे जी गुप्ता, बरोबर है, हमने पांच समान भाग किए। इसको आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दिया, उसमें से एक भाग निकाला इधर रखा, इसको भाग देके इसका एक भाग रखा, इसको भाग देके इसका एक भाग लिया, इसका एक भाग दिया, चारों को ही भाग दिया। भागहार बड़ा बड़ा था, उल्टा हो जाएगा ना, हाँ बड़ा बड़ा भागहार था तो पहले में से ज्यादा द्रव्य निकाला है, दूसरे में से थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, और ये सब इसमें मिला दिया। ख्याल में ही बात, चार को भाग दिए, इसको अलग भाग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, भागाकर की वैल्यू हर जगह अलग है। इसका भागा आवली का संख्या तो भाग है, इसमें उसमें कुछ और अधिक है, इसमें और अधिक है, इसमें और अधिक है, इन सब का जोड़ देके वो उसमें मिला दिया, ये है वेद का। तो मेरा प्रश्न था ये कौन सा है,
ये जुगुप्सा का है,
जुगुप्सा का है, उल्टे क्रम से देना ना, ये जुगुप्सा, फिर भय, हास्य, हास्य शोक और रति, इस सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के वेद को दे दिया। अभी यहाँ पढ़ेंगे, ये यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाग दे दे करके पृथक स्थापित किए हुए इन चार भागों को पांचवें समान भाग में जोड़ देने से वेद का द्रव्य होता है, यानी सब में से कुछ कुछ हिस्सा ले लिया वो वेद को दिए। वेद का तो पांचवें भाग प्लस बहुत अधिक हो गया, और पहले दूसरे तीसरे और चौथे समान भाग में भाग देकर जो पृथक द्रव्य स्थापित किए थे उन द्रव्यों के सिवाय, पहले दूसरे और तीसरे और चौथे समान भाग में से जो शेष द्रव्य बचता है वह क्रमानुसार क्या किया, हर एक में से एक एक हिस्सा निकाल लिया, और वो पूरा हिस्सा ये वेद को दिया। अब यहाँ जो बचा है वो है जुगुप्सा का, ये है भय का, ये है हास्य शोक का, फिर रति अरति का। डायरेक्ट ये दूसरी मेथड है, वो क्रमानुसार जुगुप्सा, भय, हास्य शोक और रति अरति का भाग होता है। जैसे नौ कषाय के द्रव्य का प्रमाण 26,880 है जो हमने पहले निकाला था, इसके पांच समान भाग करने से प्रत्येक भाग का प्रमाण 5,376 होता है। पहले 5,376 में आवली के असंख्यातवे भाग चार से भाग देने से लब्ध एक भाग 1,344 आता है। इसे पृथक स्थापित करने से शेष द्रव्य यानी 5,376 माइनस 1,344 4,032 बचता है। दूसरे समान भाग 5,376 में कुछ अधिक आवली के असंख्यातवे भाग 6 से भाग देने से लब्ध एक भाग 896 आता है। इसे पृथक स्थापित करने से शेष द्रव्य 4,480 बचता है। तीसरे 5,376 में उससे भी कुछ अधिक आवली के असंख्यातवे भाग 8 का भाग देने से लब्ध एक भाग 672 आता है। इसे पृथक स्थापित करने से शेष द्रव्य 4,704 बचता है। चौथे 5,376 में उससे भी कुछ अधिक आवली के असंख्यातवे भाग 12 से भाग देने से लब्ध एक भाग 448 आता है। अब ये कुछ भी संख्या लिए ना और दो दो से बढ़ेंगे तो बहुत यानी वो फिट नहीं बैठने वाला, फिर भी समझाने के लिए बता रहे। उसे पृथक स्थापित करने से शेष द्रव्य 4,928 बचता है। इस प्रकार भाग दे दे करके पृथक स्थापित किए गए एक एक भाग को, ये जो उसमें से निकाला था हमने 1344, 896, 672 और 448, 3,360 पांचवें समान भाग में मिला देने से, 5,376 में मिला देने से वेद का द्रव्य 8,736 होता है। और बाकी बचे द्रव्यों में से क्रमशः 4,032 द्रव्य जुगुप्सा का, 4,480 द्रव्य भय का, 4,704 द्रव्य हास्य शोक का और 4,928 द्रव्य रति अरति का होता है। इस क्रम से विभाग करने में भी बंटवारे का परिमाण वही आता है जो पहले प्रकार से करने से आता है। हमारे उदाहरण में जो अंतर पड़ गया है, ये पढ़ने ही वाला है क्योंकि भागार दो दो से बढ़ाया है, इतना थोड़े वो अपूर्णांक में कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ जो उदाहरण में अंतर पड़ गया है उसका कारण यह है, भागहार आवली के असंख्यातवे भाग को हमने भाग देने की सहूलियत के लिए अधिक बढ़ा लिया है,
फ्रैक्शन में नहीं,
वो कुछ फ्रैक्शन में बढ़ाएंगे तो ये बात सही होगी। अर्थात उसका प्रमाण चार कल्पित करके आगे कुछ अधिक के स्थान में 6, 8 और 12 कर लिया है। यदि वह ठीक परिमाण में हो तो द्रव्य का परिमाण पहले प्रकार के अनुसार ही निकलेगा। उसको हम उल्टा करके अपूर्णांकों में उसको डिराइव कर सकते हैं और फिर बता भी सकते हैं। ये भागहार बढ़ाने से लब्ध कम आता है, इतना ही इसमें से समझ लेना है। वैल्यू तो वही आएगी जो पहली पद्धति से आती है। अब कषाय को जो भाग मिला था, नौ कषाय के पांच डिविजन हमने देखे। देशघाती द्रव्य का बंटवारा चल रहा है। देशघाती में हमने क्या किया था, मूल में आवली का असंख्यातवा भाग अलग निकाला था, बहुभाग के दो समान भाग किए थे, एक कषाय को एक नौ कषाय को दिया, एक भाग फिर बहुभाग एक भाग किया वो कषाय को दिया और एक भाग नौ कषाय को दिया। अब जो कषाय में आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कषाय में कितने हैं, कषाय देखे हमने संज्वलन चार,
संज्वलन चार
क्योंकि बाकी तो सर्वघाती द्रव्य है, ये देशघाती में चार संज्वलन ही आते, तो चार संज्वलन में बंटवारा कैसा होगा उसको बता रहे। अब कषाय को जो भाग मिला था उसमें आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर एक भाग को पृथक स्थापित करो, शेष द्रव्य के चार समान पुंज कर दो, क्रोधमान माया लोभ है ना, हाँ। उसके बाद आवली के असंख्यातवे भाग का अवस्थित विरलन करके, अवस्थित यानी वही आवली का असंख्यात भाग ही रखना है कायम, इसलिए उसको अवस्थित कहा, उसी संख्या से बारंबार हम भाग रहे हैं। दूसरी पद्धति हमने वो बढ़ा दिया था, वैसा नहीं, उतना ही रख के उसके ऊपर पहले घटाए हुए एक भाग के समान विभाग करके स्थापित करो। जो एक भाग रखा था अलग और बहुभाग के चार समान भाग किए थे, वो अलग रखे हुए को आवली के असंख्यात भाग से भाग देना है। एक भाग अलग रखे बहुभाग किसको देना अभी देखेंगे। उनमें से एक विरलित रूप पर स्थापित किए हुए भाग को छोड़कर, यानी एक भाग को छोड़कर, बाकी के विरलित रूपों पर स्थापित किए हुए सब भागों को, यानी बहुभाग को एकत्र करके पहले पुंज में मिला देने पर संज्वलन लोभ का भाग होता है। वो पहले पुंज को हम संज्वलन लोभ कहेंगे, यानी पहले एक भाग अलग निकाला, बहुभाग के चार समान भाग किए, फिर एक भाग के फिर बहुभाग एक भाग किया, बहुभाग लोभ को दिया पहले, संज्वलन लोभ को। शेष एक विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य को फिर भी अवस्थित विरलन के ऊपर समान खंड करके दे दो, यानी वो एक भाग को दोबारा आवली के असंख्यात भाग से भाग दो, फिर एक भाग बहुभाग करना। अब जो बहुभाग आया तो लोभ के बाद किसको देना, उनमें से माया को। एक विरलित रूप पर दिए गए भाग को छोड़कर शेष सब विरलित रूपों पर दिए गए भागों को एकत्रित करके, यानी बहुभाग को अपनी भाषा में, दूसरे पुंज में मिला देने पर संज्वलन माया का भाग आता है। पुनः शेष एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को अवस्थित विरलन राशि के ऊपर पहले कहे गए विधान के अनुसार देकर उसी क्रम से एक भाग को छोड़कर और शेष बचे सब भागों को एकत्र करके तीसरे पुंज में मिला देने पर, किसकी बात है अभी, मान नहीं लिया, क्रोध लिया, संज्वलन क्रोध का भाग होता है। अनुभाग में भी हमने ऐसे ही उल्टा उसको क्रम देखा था, लोमा क्रोमा कुछ देखा, हाँ हाँ। शेष एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त हुए द्रव्य को लेकर, अभी उसको फिर दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं, अभी जितना बचा है एक भाग, उसको चौथे पुंज में मिला देने पर संज्वलन मान का भाग होता है। पहले लोभ, फिर माया, फिर क्रोध और फिर मान। यहाँ आलाप कहते हैं, यानी कथन अभी इसका होगा, मान का, क्योंकि अल्प बहुत्व चल रहा है ना, तो इसीलिए कैसे होता है वो पहले बताया, अब आलाप कहेंगे, यानी यहाँ का कथन करेंगे। मान का भाग थोड़ा होता है, यानी अल्प बहुत्व में मान को पहले रखा है, उससे क्रोध का भाग विशेष अधिक है। कितना अधिक अधिक दिया वो हमने पहले बताया, अब अल्प बहुत्व में पहले अल्प का नाम लेंगे तो मान को पहले लेंगे, फिर उससे क्रोध का भाग विशेष अधिक है, उससे माया का भाग विशेष अधिक है और उससे लोभ का भाग विशेष अधिक है। अथवा अभी अथवा कहकर इसके दूसरी पद्धति बताएंगे। पहले हमने बहुभाग एक भाग करके, एक भाग के फिर बहुभाग बहुभाग करके, पहले लोभ को दिया, फिर माया को, फिर क्रोध को, बाद में मान को। अब दूसरी पद्धति, कषाय के सब द्रव्य के समान चार भाग करके पूर्व विधान के अनुसार आवली के असंख्यातवे भाग को क्रमानुसार विशेष अधिक करके क्या करना है, चार समान भाग करना है, भाग देना। तो पहले भाग को आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देना, तो पहले किसको भाग देंगे,
मान को,
मान को, तो उसमें से बड़ा भाग निकालना है। फिर दूसरा कौन सा है, क्रोध का, वहां भागहार आवली के असंख्यात भाग से विशेष अधिक करना, तो लब्ध कम आएगा उसमें से निकालना। फिर माया, तीन को ही भाग देंगे, तीन में से निकाल कर वो लोभ में जुड़ देना, तो लोभ का द्रव्य होगा। पद्धति वही है। देखो पूर्व विधान के अनुसार आवली के असंख्यात्व भाग को क्रमानुसार विशेष अधिक करके, क्रमानुसार एक विशेष अधिक करना है ने भागहार बढ़ाना, तो लब्ध छोटा छोटा आएगा। विशेष अधिक करके पहले दूसरे और तीसरे पुंज में भाग देकर उस लब्ध भाग को चौथे पुंज में मिला देने पर संज्वलन लोभ का भाग होता है। यानी चार समान भाग किए, बाकी सभी चौथे भाग से हीन हो गए और लोभ का बहुत अधिक हो जाएगा। नीचे के भी भाग विलोम क्रम से संज्वलन माया, संज्वलन क्रोध और संज्वलन मान के भाग होते हैं। विलोम क्रम है ने अभी जिस क्रम से भाग दिया उससे उल्टा क्रम, उसको विलोम कहा। यहाँ पर भी वही आलाप करना चाहिए क्योंकि वैल्यू तो उतनी ही आएगी, तो आलाप में सबसे छोटा वाला कौन सा है? मान का। मान में द्रव्य सबसे थोड़ा है, फिर उससे अधिक क्रोध में, उससे अधिक माया में, उससे अधिक लोभ में। यह विभाग स्वस्थान गुणित कर्मांशिक को लेकर कहा है क्योंकि क्षपक श्रेणी में एक साथ संज्वलन कषायों का उत्कृष्ट द्रव्य नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? ये अन्यत्र इसको गुणित कर्मांशिक को लिया, जहां अधिक से अधिक वहां कर्म का संचय ज्यादा है। क्षपक श्रेणी में क्या होता है? क्षपणा होती है तो क्रोध का सारा ही द्रव्य, पहले नौ कषाय का पूरा द्रव्य कषाय में आएगा, फिर क्रोध का मान में, मान का माया में, माया सब लोभ में चला जाएगा। तो अलग अलग सेजेस पर अलग अलग उसके जिसके उसका प्रमाण है वो चेंज हो जाएगा। शंका, ये शंक हुआ, शंका यहाँ लिखा ना, क्योंकि क्षपक श्रेणी में एक साथ संज्वलन कषायों का उत्कृष्ट द्रव्य नहीं पाया जाता। हमें जब उत्कृष्ट द्रव्य होता है तो चार में कैसा विभाजन होता है उसकी बात हमने देखी। क्षपक शंका इस पर, क्षपक श्रेणी में संज्वलन कषायों का उत्कृष्ट द्रव्य एक साथ क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि चारों का उत्कृष्ट द्रव्य है तो उसमें कैसा विभाजन है वो हमने देखा। क्षपक श्रेणी में इसमें कुछ वेरिएशन हो जाती है, तो यही प्रश्न है क्या होता है? समाधान, क्षपक श्रेणी में नौ कषाय के सब द्रव्य का संज्वलन क्रोध में प्रक्षेप कर देने पर संज्वलन क्रोध का द्रव्य होता है। यानी पूरा का पूरा, जब हम कहते हैं ना कि उसका क्षय हो चुका, तो क्षय होने का अर्थ क्या है?
क्रोध रूप,
अन्य रूप परिणमित हो जाना, वो उदय रूप होकर खिरा नहीं अभी, तो नौ कषाय का सभी का सभी द्रव्य
क्रोध
रूप हो जाता है। तभी क्रोध में मैक्सिमम है, क्योंकि हमने पहले दो भाग किए थे, क्रोध में दिए थे यानी देशघाती का द्रव्य हमने कषाय में और नौ कषाय में दिया था, है ना? अब नौ कषाय का सभी क्रोध में आया है, तभी क्रोध में कितना अधिक हो जाएगा, फिर माया माया वो जो पहले का जो प्रोपोर्शन होगा वो नहीं रहेगा।
ये शपित कर्मांशिक जो श्रेणी चढ़ता है उपसर्ग श्रेणी, उसका भी यही डिवीजन होगा ना, कि गुणित कर्मांशिक की बात है?
नहीं नहीं नहीं, ये गुणित कर्मांश में जो हमने देखा प्रोपोर्शन वो लेना है,
और शपित
गुणित कर्मांशिक की क्षपक श्रेणी नहीं लेनी है।
नहीं नहीं, वो तो बराबर है।
हाँ।
पर शपित कर्मांशिक है जो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ा है उसमें भी यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो यही होगा, परंतु हमें मैक्सिमम पॉसिबल द्रव्य देखना था, उसकी बात है। यहाँ पर संचय, हम अधिक से अधिक संचय कितना होता है प्रत्येक द्रव्य का, उसकी बात कर रहे हैं ना, इसलिए पूरी कर्म स्थिति प्रमाण लिए था, क्योंकि हमें अधिक से अधिक वहां द्रव्य चाहिए। प्रदेश विभक्ति में मैक्सिमम, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको देखेंगे। देखो क्षपक श्रेणी में नौ कषाय के सब द्रव्य का संज्वलन क्रोध में प्रक्षेप कर देने पर, प्रक्षेप होना यानी उसका संक्रमण हो जाता है, यानी ऐड हो जाता है, यहाँ प्रक्षेप कर देते उसमें एडिशन हो जाने पर, एडिशन क्यों होती है, क्योंकि संक्रमित होते हैं, संज्वलन क्रोध का द्रव्य होता है, क्रोध संज्वलन के द्रव्य का मान संज्वलन में प्रक्षेप कर देने पर, मान संज्वलन का द्रव्य होता है, मान संज्वलन के द्रव्य को माया संज्वलन के द्रव्य में मिला देने पर, प्रक्षेप करना यानी मिला देना, माया संज्वलन का द्रव्य होता है, और माया संज्वलन के द्रव्य को लोभ संज्वलन के द्रव्य में मिला देने पर लोभ संज्वलन का द्रव्य होता है। इस कारण से क्षपक श्रेणी में भागा भाग नहीं है, क्योंकि एक साथ उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इनका एक साथ पाया जाना संभव न होने से वहां भागा भाग के विधान करने का कोई उपाय नहीं है। अथवा प्रकृतियों के एक साथ असंभवित भी सब द्रव्य का बुद्धि के द्वारा समूह करके यह भागा भाग करना चाहिए, यानी वहां भी हम कह सकते हैं जब क्रोध रूप हो गए हैं तो क्रोध में कितना द्रव्य और अन्य में कितना है, फिर मान रूप हो जाएंगे तो मान माया लोभ में कैसा प्रोपोर्शन है, वैसे हम सोच सकते हैं। अब इसी का विशेषार्थ, देशघाती द्रव्य का जो भाग संज्वलन कषाय को मिला है, देशघाती द्रव्य में से नौ कषाय को हमने देखा, अब कषाय की बात है, विशेषार्थ में दोबारा देख रहे, उसका बंटवारा उक्त दोनों क्रमानुसार चार भागों में होता है, जैसे कषाय के भाग का परिमाण 34,560 है, हमने पहले निकाला था, 65,536 को हमने चार से भाग दिया था, 16,384 आए थे उसको माइनस कर दिया था, तो ये इसका प्रमाण आया था, और उसमें हमने बहुभाग में मिलाया था, देखो 53 पृष्ठ पर 16 से भाग दिया था ना हमने,
23,040
नहीं 16,000 नहीं 384 नहीं 16 से भाग दिया था, 4,096 आया था,
नहीं नहीं हमने दो
मूल मूल में हाँ। तो 61,440 देशघाती का द्रव्य आया था,
23,040
उसको आवली के असंख्यात भाग का भाग दिया था, तो 15,360 आए थे, उसको माइनस करके 40,080 आए थे, उसके दो भाग किए थे, 23,040 आए थे, उसमें बहुभाग मिलाने पर 34,560 संज्वलन कषाय का द्रव्य वहां से ये लिया, पेज 53 से, ख्याल में आई बात, देखो ऊपर 53 पृष्ठ पर देखो, देखो फिर से ये 65,536 तो टोटल मोहनीय था, वो मैं एक स्टेप भूल गई, मैंने उसी को डायरेक्ट भाग दिया था, उसको तो 16 से भाग देना, एक भाग तो अनंतवा भाग हो जाएगा, वो देशघाती का द्रव्य होगा और सर्वघाती का, सॉरी वो सर्वघाती का द्रव्य हुआ और देशघाती का
61,440
पांचवी लाइन में। अब ये क्या है, देशघाती का द्रव्य है,
तो उसका एक भाग,
इसको चार से भाग दिया, 15,360 को अलग रखा तो कितने बचे, 40,080 आए,
उसका दो भाग किए,
उसके दो समान भाग किए तो 23,040 आ गए, वो हमने 15,360 अलग रखा था, उसको फिर दोबारा चार से भाग दिए,
नहीं इसको 23,040 पे मिलाने से,
नहीं उसको डायरेक्ट नहीं मिलाना, 15,360 को चार से भाग देना, उसका एक भाग बहुभाग करना, उसका बहुभाग 11,520 आता है,
23,040 को मिलाया
तो उसमें मिलाया तो 34,560 आया
संज्वलन।
ये क्या है, वो पूरे कषाय का द्रव्य है, यानी संज्वलन चारों आ गए उसमें, उसी को अभी यहाँ लिया है, अब ये तो संज्वलन के खाते में आया, अभी हम क्रोध मान माया लोभ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देखना है। उसमें आवली के असंख्यात भाग के कल्पित प्रमाण चार से भाग देने से लब्ध 8640 आता है। चार से भाग दिया ना, 4 8 32, 4 7 24, 4 6 16, 4 0 0 आता है। इस एक भाग को जुदा रख, शेष बहुभाग यानी 8640 को अलग निकालना है, तो 34560 में से उसको बाद करने से 25920 आते हैं। उसके चार समान भाग करो, फिर जुदे रखे एक भाग 8640 में चार का भाग देकर एक भाग लब्ध एक भाग जो है 2160 को अलग रखकर शेष बहुभाग जो है कितना है वो 6480, क्योंकि 8640 में से 2160 माइनस कर दे, बाद कर दे 6480 को प्रथम समान भाग। देखो पहले क्या किया था हमने, 8640 में से वो भी 6480 है, हाँ दोनों समान हो गए। पहला समान भाग 6480 में उसको जोड़ दिया तो 12960 आया, वो संज्वलन लोभ का भाग होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? पहले एक भाग अलग रखा था, एक भाग और बहुभाग के हमने चार समान भाग किए, चार समान भाग में फिर एक भाग का बहुभाग और मिलाया तो वो उसकी वैल्यू आ गई। फिर जुदे रखे एक भाग 2160 में फिर चार का भाग देने से लब्ध एक भाग 540 को जुदा रखकर शेष बहुभाग कैसे निकाला, 2160 में से 540 बाद किए 1620, दूसरे समान भाग 6480 में जोड़ने से संज्वलन माया का भाग आया, ये 8100 आता है। जुदे रखे भाग 540 में फिर चार का भाग देकर एक भाग 135 को जुदा रखकर शेष बहुभाग यानी 405 को तीसरे समान भाग में जोड़ने से संज्वलन क्रोध का 6480 प्लस 405 6885 होता है। और अभी जो एक भाग बचा 135 को चौथे समान भाग में मिलाने से संज्वलन मान का भाग 6615 होता है, यानी संज्वलन मान को सबसे कम। दूसरे क्रम के अनुसार ये दूसरी जो पद्धति है वो भागाकार वाली पद्धति, डायरेक्ट चार समान भाग करेंगे और भागाकार को बढ़ाते बढ़ाते उल्टे क्रम से भी भाग देना, मान को फिर क्रोध को फिर माया को और फिर जो निकाला उसमें से वो लोभ में मिला देंगे। दूसरे क्रम के अनुसार कषाय के सर्वद्रव्य 34560 के चार समान भाग करके पहले दूसरे और तीसरे समान भाग में क्रम से आवली के असंख्यातवे भाग से, दूसरे के लिए क्या कुछ अधिक आवली के असंख्यातवे भाग से और उससे भी कुछ अधिक आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देकर भागहार बढ़ा बढ़ा कर, क्योंकि पहले में से ज्यादा माल निकालना है, दूसरे में से थोड़ा कम, तीसरे में से थोड़ा कम, लब्ध तीनों एक एक भागों को जोड़कर चौथे समान भाग में मिलाने से संज्वलन लोभ का भाग होता है। और पहले दूसरे और तीसरे समान भाग में से अपने अपने लब्ध एक एक भाग को घटाने से जो द्रव्य शेष बचता है वह क्रम से संज्वलन मान, संज्वलन क्रोध और संज्वलन माया का द्रव्य होता है, जैसा कि प्रारंभ में ही कहे आए हैं। दो पद्धति है ना, आवली का असंख्या तो भाग दे देकर बहुभाग बहुभाग देते जाओ, या डायरेक्टली समान भाग करो फिर पहले वाले को, यानी यहाँ जो लास्ट है मान उसका आवली का असंख्या तो भाग का भाग दो, आगे वाले को भागार बढ़ाकर भाग दो, उसके आगे भागार और बढ़ाकर भाग दो, जितना निकला है उतना सारा लोभ में दे दो और बाकी जो बचा है वो अपना अपना रख दो। जैसा कि प्रारंभ में कहे हैं, गुणित कर्मांश जीव के प्रदेश सत्कर्म को लेकर ही यह विभाग किया गया है। क्षपक श्रेणी में यद्यपि संज्वलन चतुष्क का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, किंतु वह एक साथ चारों कषायों का नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? क्या संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट होगा ना? हाँ होगा, कभी नौ कषाय का द्रव्य क्रोध में आएगा, तभी मान का कभी होगा, यानी अलग अलग पोजीशन एक साथ नहीं है, इसलिए कहते एक साथ नहीं, चारों का उत्कृष्ट नहीं पाया जाएगा। परंतु अन्य जो जीव है गुणित कर्मांशिक, उसके उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होगी और उस समय उसके इस तरह से बंटवारा होगा। देखो क्या कहते हैं, एक साथ चारों कषायों का नहीं होता, किंतु जब पुरुष वेद और नौ कषायों के प्रदेशों का प्रक्षेप संज्वलन क्रोध में हो जाता है, तब संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। हमने जब वेद की क्षपना होती है, नपुसक वेद की क्षपना होती है, क्या होता है, वो पुरुष वेद श्रीवेद रूप होते हैं, श्रीवेद की क्षपना होती है वो पुरुष वेद रूप हो जाता है, बाद में पुरुष वेद है वो सारे ही संज्वलन क्रोध रूप से परिणमित होते हैं, संक्रमित होते हैं, छह नौ कषाय भी उस रूप से हो जाते हैं, तो सारे ही नौ कषायों का माल क्रोध में आ जाता है। यानी जब वो वेद और नौ कषाय संज्वलन क्रोध रूप परिणमित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तब संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, उसी समय लेना। जब यही क्रोध मान में प्रक्षिप्त हो जाता है, क्रोध के सारे परमाणु मान रूप हो जाएंगे, तब मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इन्हें अलग अलग पॉइंट पर उसका अपना अपना उत्कृष्ट होता है। नवे गुणस्थान में क्षपना के काल में होंगे, अवेद भाग होने पर, अपगत वेद होने पर, क्योंकि पहले तो वो पुरुष वेद की क्षपना होगी, उसके साथ साथ नौ कषाय, जो छह नौ कषाय है, वो क्षपना होती का अर्थ ही वो सारे संक्रमित होते संज्वलन क्रोध रूप से। वो संक्रमण को क्या कहते मालूम है?
थिबुक।
हाँ? थिबुक वाला नहीं है,
नहीं।
आनुपूर्वी संक्रमण है। क्यों? उसी क्रम से होता है। अन्यत्र अन्य जीवों का लोभ है, वो मान रूप मान है, वो लोभ रूप कैसा भी होता है, अब यहाँ विशिष्ट क्रम से होगा। पुरुष वेद और छह नौ कषाय क्रोध रूप हो गए, क्रोध है वो मान रूप होगा, मान है वो माया रूप, और माया वो लोभ रूप, और लोभ रूप से फिर क्षपना होगी सबकी। इसको अनुपूर्वी संक्रमण कहेंगे। जब यही क्रोध मान में प्रक्षिप्त हो जाता है, तब मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। अतः क्षपक श्रेणी में श्री करना भागा भाग नहीं होता। फिर भी यदि वहां भागा भाग करना ही हो तो उनके सब द्रव्य का समाहार करके कर लेना चाहिए, यानी वहां हिसाब करके कर दो कहते हैं, क्योंकि कितना था नौ कषाय में, इतना था, अब वो क्रोध का ओरिजिनल कितना था, इतना था, अब उसमें नौ कषाय का आया गया तो कितना हुआ, उसको अभी हिसाब करते बैठो कहीं। अब मोनिय के द्रव्य के ये तो देश घाती का बंटवारा देखा, नौ कषाय में पांच देखे, कषाय में चार देखे। अब यहाँ सर्वघाती का बताएंगे, जो हमने अनंत वा भाग अलग रखा था,
चार हजार
उसको कितने में बंटवारा करना है? तेरह में करना, एक मिथ्यात्व तो और बारह कषाय में। अब मोनिय के द्रव्य के अनंत खंड करके पहले घटाए हुए सर्वघाती प्रतिबद्ध एक खंड प्रमाण द्रव्य को लेकर, यानी अनंतवे भाग को लेकर, उसमें आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो। एक भाग को पृथक स्थापित करके शेष द्रव्य के समान तेरह पुंज करो। ये सब सर्वघाती है ना, एक एक को अलग निकालना और बाकी तेरा। फिर आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके पहले अलग स्थापित किए गए द्रव्य के समान खंड करके विरलित राशि पर दो, यानी जो हमने पहला एक भाग अलग निकाला था आवली का असंख्यातवा भाग, उसको फिर आवली का असंख्यातवा भाग दो, बहुभाग और एक भाग करो अपनी भाषा में। उन खंडों में से एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों को लेकर पहले पुंज में मिला देने पर, यानी जो पहला बहुभाग है वो किस में मिलाना, मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व का भाग होता है, यानी अभी जो हमने 13 समान भाग किए हैं और एक भाग आवली का असंख्यात विभाग से भाग देकर निकाला था, अब यही पद्धति है, हर बार जो निकला उसको आवली का असंख्यात विभाग का भाग देना, उसमें बहुभाग एक भाग करते जाना, अभी 12 बार और बताएंगे। तो क्या करना, पहला भाग किसको देना है, मिथ्यात्व को, फिर दूसरा जो बहुभाग आएगा तो इस प्रकार शेष कुंजों में भी सब क्रिया को जानकर भागा भाग करने पर क्रमशः, अभी ये इतनी बार बताएंगे नहीं क्योंकि 13 है ना टोटल, तो मिथ्यात्व के लिए एक बार दिया भाग, फिर और 12 बार करना पड़ेगा वो, तो ये भाग देकर क्रमशः किसके किसका नंबर आएगा। अनंतानुबंधी लोभ, हमने भी संज्वलन में भी पहले लोभ, फिर माया, फिर क्रोध और मान, यह सीक्वेंस वही होगा, पहले अनंतानुबंधी को लिया, फिर प्रत्याख्यानावरण बाद में अप्रत्याख्यानावरण को लेंगे, उसमें भी लोभ, माया, क्रोध और मान, यही ऑर्डर होगी। तो देखो, पहला पॉइंट हमने मिथ्यात्व को दिया, दूसरे नंबर पर अनंतानुबंधी लोभ, तीसरे पर अनंतानुबंधी माया, चौथा नंबर अनंतानुबंधी क्रोध और पांचवा नंबर अनंतानुबंधी मान, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार हो गए। अब छठे पर प्रत्याख्यानावरण पहले लिया, अप्रत्याख्यान नहीं लिया, प्रत्याख्यानावरण लोभ, सातवां प्रत्याख्यानावरण माया, आठवां प्रत्याख्यानावरण क्रोध, नौवां प्रत्याख्यानावरण मान, ये प्रत्याख्यानावरण के चार हो गए, ये चार चार आठ और पहला एक मिथ्या, तो नौ हो गए। अब कहते अप्रत्याख्यानावरण लोभ, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और लास्ट में 13वें नंबर पर अप्रत्याख्यानावरण मान के भाग होते हैं। अब आलाप कैसे करेंगे, अल्प से लिख कहेंगे, तो पहला नाम किसका लेंगे, अप्रत्याख्यानावरण मान का लेंगे। यहाँ आलाप का कथन करने पर अप्रत्याख्यानावरण मान से लेकर मिथ्यात्व पर्यंत विशेष अधिक क्रम से ले जाना चाहिए, ये विशेषहीन करते गए थे, अब यह विशेष अधिक, अथवा दूसरी पद्धति, इसी सर्वघाती से प्रतिबद्ध सब द्रव्य को लेकर समान 13 पुंज करके फिर आवली के असंख्यातवे भाग से प्रथम पुंज में भाग देकर एक भाग को पृथक स्थापित करो। इस पुंज को कौन सा नाम देंगे, कौन सा मान, बहुत अच्छा, अप्रत्याख्यानावरण मान, क्योंकि उसमें से बड़ा भाग निकाला, उल्टे क्रम से जाना है अभी। फिर इसी आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भागहार को क्रम से विशेष अधिक करके, यानी भागहार बढ़ाना है, क्रमानुसार शेष 11 पुंजों में भी भाग दे देकर, भाग देने से लब्ध सब द्रव्य का एक पिंड करके 13वें पुंज में मिला देने पर मिथ्यात्व का भाग होता है। मिथ्यात्व को छोड़कर अन्य 12 में से थोड़ा थोड़ा माल सब में से लेना, उल्टे क्रम से लेना, अप्रत्याख्यान और मान में से ज्यादा लेना, फिर थोड़ा कम इस तरह से 12 में से निकाल के टोटल करके मिथ्यात्व में दे देना। शेष भाग भी क्रमानुसार पश्चातानुपूर्वी क्रम से अनंतानुबंधी लोभ आदि के होते हैं, पश्चातानुपुण्य ने जिस क्रम से भागार दिया था उसके उल्टे क्रम से, पहले एक होता है पूर्वानुपूर्वी, सीधे क्रम से, पश्चातानुपूर्विणी उल्टे क्रम से, उसी को दूसरा एक नाम अभी हमने देखा विलोम क्रम से, एक होता है अनुलोम एक होता है विलोम। यहाँ सर्वत्र ही भागहार आवली के असंख्यात भाग के विशेष अधिक करने पर जो राशि की उत्तरोत्तर हानि होती है, भागहार बढ़ाने पर राशि की हानि होती है लब्ध राशि, जहाँ भागहार बड़ा होता है वहाँ लब्ध राशि कम छोटी होती है, उसी द्वारा शिष्यों को बोध उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ पर भी पूर्वोक्त ही आलाप करना चाहिए, आलाप तो वही हो गए और प्रत्याख्यानावरण मान सबसे थोड़ा है, इस तरह से आलाप में कोई वेरिएशन नहीं और ना ही संख्या में। निकालने की पद्धति में दो पद्धति है, क्योंकि जो पहले कहा है उससे कोई अंतर नहीं है, आलाप तो वही होगा जैसे अभी अभी बताया था कि एक भाग निकालो और आवली के असंख्यात भाग से भाग दो, पद्धति यह है या दूसरी पद्धति है, उसका प्रोपोर्शन बंटवारा तो वैसा ही हो रहा है जैसा हो रहा। विशेषार्थ देशघाती द्रव्य का बंटवारा बतलाकर अब सर्वघाती द्रव्य के भागा भाग का क्रम बतलाते हैं जो बिल्कुल पूर्ववत ही है। देखो ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद बाकी, इसलिए भागा भाग को ये यहाँ लिया पहला। सर्वघाती द्रव्य का यह विभाग मोहिनी की केवल 13 प्रकृतियों में ही होता है, एक मिथ्यात्व और 12 कषाय। जब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो मिथ्यात्व का ही द्रव्य शुभ परिणामों से प्रक्षालित होकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणत होता है, अतः उन्हें पृथक द्रव्य नहीं दिया जाता। यानी मिथ्यात्व प्रकृति में से ही ये दो प्रकृति तैयार होती है, तो वहां शुभ परिणामों से प्रक्षालित कहते धुए धोया यहां भी सर्वघाती द्रव्य में आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर लब्ध एक भाग को जुदा रख शेष बहुभाग द्रव्य के 13 समान भाग करने चाहिए। वही बात जो अभी हमने पढ़ी है, लब्ध एक भाग में पुनः आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग को जुदा रख शेष बहुभाग पहले भाग में मिलाने से मिथ्यात्व का द्रव्य होता है। जुदे रखे एक भाग, हाँ हाँ फिर प्रश्न, हाँ देखो पहले में पहले हमने एक भाग अलग निकाला था और बहुभाग के 13 समान भाग किए, हाँ हाँ फिर दोबारा उसमें मिलाया, हाँ पहले बहुभाग को हमने 13 में डिवाइड किया और दूसरा बहुभाग एक में ही दिया, हाँ पर दूसरा बहुभाग मिलाएंगे तो दूसरा एक भाग निकला वो बाकी रहेगा ना, उसको कहाँ छोड़ा, हाँ वो आते जाएगा वो तो, क्योंकि जितना है ओरिजिनली उतना सब में डिवाइड होने वाला है, पूरे एक प्रकृति का कैसा आएगा उसमें। पहला समान भाग तो 13 हो गए, तो समान भाग में पहला बहुभाग मिलाएंगे तो मिथ्यात्व, हाँ हाँ बहुभाग का 13वां भाग ऐसा करो, हाँ शेष भाग के ही बहुभाग निकालो ना, फिर शेष भाग में से बहुभाग निकाला तो शेष भाग जो है हमारा छोटा छोटा होता चला जाएगा, फिर उसमें बहुभाग फिर निकाला, फिर उसका बहुभाग, इस तरह से। यानी मिथ्यात्व में सबसे ज्यादा द्रव्य आता है, ये बात बताना है। सबके बहुभाग में पहले तो 13 समान भाग हो ही गए हैं, अब जो एक भाग है उसका बहुभाग दिया
मिथ्यात्व में,
क्योंकि वो बहुत बड़ा है, फिर रहे हुए का फिर बहुभाग करना है, वो लोभ में देंगे, अनंत आनुमंदी लोभ में।
नहीं,
पहले अनंतानुबंधी, फिर प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान। भागहार करते समय उल्टा अप्रत्याख्यान मान से ले। देखो विशेषार्थ में हम मिथ्यात्व का द्रव्य होता है वहां तक पढ़े, 3, 3, 6, 3, 9, 9 लाइन। जुदे रखे एक भाग में, पुनः अवली के असंख्यात्व भाग से भाग देकर एक भाग को जुदा रख, बहुभाग दूसरे समान भाग में मिलाने से अनंतानुबंधी लोभ का भाग होता है ना। पहला नंबर मिथ्या, तो दूसरा नंबर अनंतानुबंधी लोभ। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए, ये इतने में पटाया उन्होंने, उन्होंने वहां बता ही दिए थे सभी, 13 के 13 नाम बताए थे। दूसरे क्रम के अनुसार, दूसरी पद्धति से सर्वघाती द्रव्य के 13 समान भाग करके, पहले ही 13 समान भाग करना। अब वो मिथ्यात्व का भाग को छोड़कर बाकी 12 में भाग देना, और हर एक में से कुछ कुछ भाग निकाल के सारा मिथ्यात्व में दे देना। तो सर्वघाती द्रव्य के 13 समान भाग करके 12 भागों में से पहले भाग में आवली के असंख्यात्व भाग से पहला भाग कौन सा हुआ? अप्रत्याख्यानावरण मान, उल्टे क्रम से लेना है ना, उसमें छोटा भाग, भागहार छोटा, तो उसमें से निकलेगा माल ज्यादा। और शेष 11 भागों में कुछ कुछ अधिक आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर लब्ध एक एक भागों को जोड़कर 13वें भाग में भाग मिला, 13वें भाग में मिलाने से मिथ्यात्व का द्रव्य होता है। और 12 समान भागों में अपने अपने लब्ध एक भाग को घटाने से जो जो द्रव्य बचता है, जितना हमने निकाला, वो निकालने के बाद जितना अपना अपना बचेगा वो अपना अपना द्रव्य, वह क्रम से अप्रत्याख्यानावरण मान क्रोध माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण मान क्रोध माया लोभ, और अनंतानुमंदी मान क्रोध माया लोभ का भाग होता है अल्प से बहुत्व की ओर। यहाँ अंत में ग्रंथकार ने कहा है, दूसरे क्रम में जो भागहार आवली के असंख्यातवे भाग को कुछ अधिक किया है, सो कितना अधिक करना चाहिए, यह बात गणित की प्रक्रिया द्वारा शिष्यों को बतला देना चाहिए। यहाँ एक बात खास तौर से ध्यान देने योग्य है कि गुमटसार कर्मकांड में सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा देशघाती प्रकृतियों में भी करने का विधान किया है। सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा देशघाती में भी, और इसलिए 13 में संज्वलन चतुष्क को मिलाकर मुनि के सर्वघाती द्रव्य का विभाग 17 प्रकृतियों में किया है। जैसा कि कर्मकांड की गाथा नंबर 199 और 202 से स्पष्ट है, कर्मकांड में ये बात आई है। श्वेतांबर ग्रंथ कर्म प्रकृति के अनुसार, ये कर्म प्रकृति नाम का उनका ग्रंथ है श्वेतांबरों का, सर्वघाती द्रव्य के 2 भाग होकर आधा भाग दर्शन मुनि को और आधा भाग चारित्र मुनि को मिलता है, तथा देशघाती द्रव्य का आधा भाग कषाय मुनि को और आधा भाग नो कषाय मुनि को मिलता है। दर्शन मुनि को जो आधा भाग मिलता है वह सब मिथ्यात्व प्रकृति का होता है, और चारित्र मुनि को जो भाग मिलता है वह 12 कषायों का होता है, तथा उसका आलाप वही होता है जो कि यहाँ मूल ग्रंथ में बतलाया है। उन्होंने वो सारा चारित्र मुनि दर्शन मुनि में बतला, 13 समान भाग नहीं करते हुए दर्शन मुनि चारित्र मुनि को उन्होंने बता दिया है।
तो इसके हिसाब से मिथ्यात्व में बहुत ज्यादा होगा।
हाँ,
क्योंकि आधा भाग मिथ्यात्व में,
हाँ, पूरा ही आधा चला गया। अब दर्शन त्रिक के स्वस्थान की अपेक्षा भागा भाग करने पर मिथ्यात्व को जो भाग मिला उसकी 3 राशियां करो। ये दर्शन त्रिक क्या होता है?
मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व,
दर्शन मोहनी के त्रिक, दर्शन त्रिक यानी दर्शन मोह त्रिक। तो मिथ्यात्व को जो भाग मिला है उसी की तीन राशियां करेंगे। उनमें से पहले पुंज को छोड़ दो, दूसरे पुंज में पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाग देकर लब्ध एक भाग को उसी पुंज में से घटा देने पर जो शेष बचे वह सम्यक्त्व का भाग होता है। फिर गुण संक्रम भागहार का जो प्रमाण कहा है उसमें से कुछ कम करके उससे तीसरे पुंज में भाग दो, लब्ध भाग को उसी पुंज में से घटा देने पर जो शेष बचता है वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भाग होता है, और पहला पूरा पुंज मिथ्यात्व का भाग होता है, अथवा सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य का बुद्धि के द्वारा एक पुंज करके पुनः उसके तीन समान भाग करो। उसमें से पहले भाग में पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाग देकर भाग देने से जो द्रव्य प्राप्त हुआ उसके कुछ कम आधे भाग को दूसरे पुंज में मिला दो और शेष द्रव्य को तीसरे पुंज में मिला दो, यानी आधे से कम पहले पुंज में और थोड़ा ज़्यादा है वो और तीसरे में। ऐसा करने पर क्रमशः सम्यक मिथ्यात्व, यानी पहले में से बहुत सारा निकला और दूसरे दो पुंजों में मिला दिया तो सबसे कम द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्मिथ्यात्व के भाग होते हैं। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का भाग थोड़ा है, हमें लगता है सम्यक्त्व का थोड़ा होगा, ऐसा है, सम्यक मिथ्यात्व का कम है, सम्यक्त्व का भाग उससे विशेष अधिक है और मिथ्यात्व का भाग उससे विशेष अधिक है। देखो क्या कहते हैं, फिर पढ़ेंगे। पहले मिथ्यात्व का जो भाग मिला उसकी तीन राशियां करो
और गुण संक्रमण का भाग दो, एक को
पहले पुंज को छोड़ दो समान भाग में से, दूसरे पुंज में पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाग देकर लब्ध आया उसको उसमें से घटा देना, जो बचा वो सम्यक्त्व का है। सम्यक्त्व का मिल दिया, यानी सम्यक्त्व के लिए क्या किया, पल्ले के असंख्यात वे भाग समान खंड को पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाग देकर
एक भाग
निकाल लिया, जो बचा वो सम्यक प्रकृति है। अभी गुण संक्रमण भागहार में से कुछ कम करके उससे तीसरे पुंज में भाग दो, पहला पुंज तो ऐसा ही रखा था तो तीसरे पुंज में भाग दो, लब्ध को उसी में से घटा कर सम्यक मिथ्यात्व का भाग होता है।
या पल्ले का असंख्यात भाग में कुछ कम करके भाग दो,
हाँ, तो पहला पूरा मिथ्यात्व का है ना, दूसरे में पल्ले का असंख्यात भाग से भाग देकर जो बचा वो सम्यक्त्व का, और गुण संक्रमण भागहार का भाग देकर जो बचा वो सम्यक मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व का कम है, सम्यक्त्व का उससे ज्यादा है और मिथ्यात्व का बहुत ज्यादा है। अब यहाँ सब आलापों को संक्षेप में कहते हैं, सब यानी सभी टोटल मिथ्यात्व सही सभी कषाय नौ कषाय सबको एक साथ लेंगे, मिथ्यात्व कषाय और नौ कषाय। अप्रत्याख्यानावरण मान का भाग थोड़ा है, क्रोध का भाग उससे विशेष अधिक है, माया का भाग उससे विशेष अधिक है और लोभ का भाग उससे विशेष अधिक है। प्रत्याख्यानावरण मान का भाग उससे विशेष अधिक है, क्रोध का भाग उससे विशेष अधिक है, माया का भाग उससे विशेष अधिक है और लोभ का भाग उससे विशेष अधिक है। ये पहले अप्रत्याख्यान उल्टे क्रम से जा रहे हैं, अल्प से अधिक, फिर प्रत्याख्यान लिया, फिर अनंतानुबंधी मान का भाग उससे विशेष अधिक है, क्रोध का भाग उससे विशेष अधिक है, माया का भाग उससे विशेष अधिक है और लोभ का भाग उससे विशेष अधिक है। ये 12 हो गए। हमने पहले जब 13 भाग किए थे वहाँ मिथ्यात्व को रखा था, अभी दर्शन मोने की 3 करना है, तो इसलिए कहते सम्यक मिथ्यात्व का भाग उससे विशेष अधिक है, क्योंकि इन तीनों में भी जो अल्पभूतव था तो यहाँ लोभ का जितना था अनंतानुबंधी के उससे सम्यक मिथ्यात्व का अधिक है, फिर सम्यक का भाग उससे विशेष अधिक है और मिथ्यात्व का भाग उससे विशेष अधिक है। ये तो कषायों की बात हुई, कषाय और मिथ्यात्व और कषाय, यानी दर्शन मुनि के 3 किए और 12 कषाय लिए, 15 हो गए। अब जुगुप्सा का भाग उससे अनंत गुणा है, कितना लिखा?
अनंत गुणा।
अनंत गुणा क्यों लिखा
वहाँ पे? अनंत का भाग
क्या? क्योंकि ये 15 मिलकर अनंत वे भाग में आते हैं और अनंत बहुभाग में से हमने 9 कषाय और संज्वलन को दिया था, तो इसलिए यहाँ अनंत गुणा। फिर भय का भाग उससे विशेष अधिक है। हाँ, ये 17 पर आ गए। भय मिथ्यात्व तक तो 15 लिए थे, यानी 12 कषाय और दर्शन मोने के 3, फिर जुगुप्सा को लिया अनंत गुणा, फिर भय उससे विशेष अधिक, उससे आगे 18वें पॉइंट पर हास्य शोक का भाग उससे विशेष अधिक है, फिर रति अरति का उससे विशेष अधिक है और वेद का भाग उससे विशेष अधिक है। अब संज्वलन को ये, क्योंकि हमने कषाय में ज्यादा दिया था बहुभाग और 9 कषाय में कम दिया था, इसलिए उसका नंबरिंग पहले आया अल्प में, और वो 5 में विभाजित था, ये 4 में है, तो 21 पॉइंट पर मान संज्वलन का भाग उससे विशेष अधिक है, क्रोध संज्वलन का उससे विशेष अधिक है, माया संज्वलन का उससे विशेष अधिक है और लोभ संज्वलन का भाग उससे अधिक है। ये 22 तो बंध योग्य है और 2 तो मिथ्यात्व में से बनी हुई प्रकृतियां, इसलिए 24 किए यहाँ पर, क्योंकि हास्य रति को इकट्ठा लिया, शोक अरति को, सॉरी रति अरति को इकट्ठा लिया, हास्य शोक को लिया और 3 वेद को,
2-2-4 कम हो गए, 28 में से
तो 4 कम हो गए ना,
28 में से
28 में से 24 नंबर लिए। इस प्रकार इसी प्रकार 3 प्रकार के मनुष्यों में जानना चाहिए, यानी ये जो प्रपोर्शन जो है ये तो गुणित कर्मांशिक में बताया था, जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल है संचय, तो कहते इसी प्रकार 3 प्रकार के मनुष्यों में जानना चाहिए। रुकेंगे
यार, गति अपेक्षा ये अलग अलग हो जाएगा,
वो अलग नहीं होगा परंतु आदेश में वो अलग अलग होगा। पढ़ेंगे हम इसको आने के बाद
नहीं, कल है ना,
कल सुबह है ना, हाँ हाँ कल सुबह, तो कल विशेषार्थ में पढ़ेंगे इसको। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनु सदा।